ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋದಯ, ಕುಲಪತಿ ಸಕ್ಸೇನಾಜಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ಜಿ, ಭಗವತಿಜಿ, ಅರುಣ್ ಓಝಾಜಿ, ಮುನೀಶ್ವರ್ಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತ, ನಾಗರಿಕ ತಥಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂಧುಗಣ್ ಅವ್ರ ಮಾತೃವೃಂದ, ಸ್ವದೇಶಿ ಜಾಗರಣ ಮಂಚಕ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟನ ಕಬ್ ಹುವ ಯಹ ಇತಿಹಾಸ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಕಿಂತು ಯಹ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟನ ಥಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೀಜಾರೋಪಣ ಕಬ್ ಹುವ ತೋ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಜಿ ಜಬ್ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಥೆ ಅಪ್ನೆ ಚಾಚಾ ಕೆ ಯಹ ರಾಮಪಾಯಲಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಗಯೆ ಥೆ, ವಿಜಯದಶಮಿ ಕಾ ದಿನ ಥಾ, ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಲೋಗೋನೆ ಕಿಯಾ ಥಾ, ವಹೀ ಸಭಾ ಹುಯಿ ಥಿ, ಉಸ್ ಸಭಾ ಮೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಜಿ ಕಾ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಟ ಭಾಷಣ ಹುವ ಥಾ, ವಹ ಸ್ವದೇಶಿ ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಥಾ, ಔರ್ ಉಸ್ ಸಭಾ ಮೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಜಿ ನೆ ಉಸ್ ಛೋಟೆ ಉಮರ್ ಮೇ ಭಿ ಸಭಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಲೋಗೋ ಸೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ವಾಯಿ ಥಿ ಕಿ ಮೇ ಆಜೀವನ್ ಸ್ವದೇಶಿ ವ್ರತ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರುಂಗಾ. ಮೈ ಸಮಜ್ತಾ ಹೂ ಕೆ ಆಜ್ ಜೊ ಹಮಾರಾ ಮಂಚ ಚಲ್ ರಹಾ ಉಸ್ಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೀಜಾರೋಪಣ ಉಸ್ ಸಭಾ ಸೆ ಹುವಾ ಹೈ ಐಸಾ ಮಾನಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಇತನೆ ದಿನ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ ಪ್ರಶ್ನ ಆತಾ ಹೈ ಭಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಆಪ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೇ ಜಾಯಿಯೇ, ಆಪ್ಕೋ ಪತಾ ಚಲೇಗಾ ಜಿಧರ್ ಉಧರ್ ಆಪ್ಕೋ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ದಿಖೆಂಗೆ, ಬಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಯ್ ಅಮೇರಿಕನ್, ಬಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಯ್ ಅಮೇರಿಕನ್, ಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಹೈ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಿ ಮಹಾರಾಣಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊನಾರ್ಕ್, ಉನ್ನೊಂದೇ ಸೋಚಾ ಕೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಜೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈ ವೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ನೀ ಹೈ, ಜರ್ಮನ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹೈ, ವೋ ಖರೀದನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಖುದ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಲೋಗೋನೆ ಪ್ರಕಟ ವಿರೋಧ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಕಹಾ ಕೆ ಆಪ್ ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ಕಿ ಪ್ರತೀಕ ಹೈ, ಆಪ ಹಿ ಯದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರ್ ಛೋಡ್ಕರ್ ಜರ್ಮನ್ ಕಾರ್ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ತಿ ಹೈ ತೋ ಕ್ಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾ ಜಾಯೇಗಾ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೋ ಜರ್ಮನ್ ಕಾರ್ ಖರೀದನೆ ನಹೀ ದಿಯಾ. ಅಮೇರಿಕಾ ಮೇ ಏಕ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಂತರೆ ಹೋ ಗಯೆ. ಅಮೇರಿಕಾನೆ ಜಾಪಾನ್ ಸೆ ಕಾ ಉಸ್ ಸಮಯ ಜಾಪಾನ್ ಆಜ್ಕೆ ಜೈಸಾ ಸಮರ್ಥ ನಹೀ ಥಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ಕೆ ದಬಾವ್ ಮೇ ಥಾ. ಜಾಪಾನ್ ಕೋ ಕಹಾ ಕೆ ಜಾಪಾನ್ ಕೆ ಮಹಿಳಾಂ ಕೋ ಸಂತರೆ ಬಹುತ್ ಪಸಂದ ಆತೆ ಹೈ, ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಯಹಾ ಸಂತರೆ ಭೇಜೆಂಗೆ. ಜಾಪಾನ್ ನೆ ಕಹಾ ನಹೀ, ಕೋಯಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಹೀ ಹೈ. ಬೋಲೆ ನಹೀ ನಹೀ, ಹಮ್ ಭೇಜ್ತೆ ಹೈ. तो दबाव में आकर उन्होंने संतरे स्वीकार किए तो सारे मार्केट्स जापान के संतरों से भरे हुए थे. जापानी महिलाओं को संतरे पसंद है, यह भी बात सही थी, लेकिन एक भी संतरा बेचा नहीं गया. सारे मार्केट संतरे से भरे हुए थे अमेरिकन, एक भी संतरा बेचा नहीं गया. यह स्वदेशी है. वियतनाम के प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह जब हिंदुस्तान में आए, जैसे वो हवाई जहाज से उतर रहे थे, करस्पॉन्डेंट वहां तक गए थे तो देखा कि उनकी पैंट यहां सिलाई थी. लोगों ने पूछा कि अरे आप तो प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री है और आपकी सिलाई है यानी पैंट फटी हुई है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा माय कंट्री कैन अफोर्ड ओनली सो मच, दिस इज स्वदेशी. और 1931 में वायसराय इरविन और महात्मा गांधी इनकी वार्ता चल रही थी, अपराह्न का समय था, उनके लिए चाय आई, गांधी जी के लिए नींबू पानी आया. गांधी जी आराम से यहां से कुछ पूड़ी निकाले, वायसराय देख रहे थे उत्सुकता से क्या करते हैं, पूड़ी निकाले नींबू पानी में डाल दिया. वायसराय ने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि आपके कानून का, नमक कानून का उल्लंघन करते हुए मैंने जो नमक बनाया था उसकी ये पूड़ी है, वो नींबू पानी में डाल रहा हूं। दिस इज स्वदेशी। तो हमने समझना चाहिए कि स्वदेशी का अर्थ क्या है। स्वदेशी और देशभक्ति दोनों एक ही बातें हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच का जब से निर्माण हुआ, ऐसा लगता है कि एक विषय में भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली और स्वदेशी जागरण मंच की जन्म कुंडली इसमें साम्य है। कम से कम एक विषय में तो है कि जन्म होने के प्रारंभ से ही कट्टर विरोध प्रारंभ होना। भगवान कृष्ण का भी ये हुआ, उनका जन्म हुआ ही नहीं था, कट्टर विरोध शुरू हो गया। वही बात मंचकी हुई। मंचकी स्थापना के पूर्व मैं कलकत्ता गया था, वहां बातचीत में हमारे ये बात आई कि ऐसा कुछ स्वदेशी मंच हम बनाने वाले हैं। तो कम्युनिस्ट ने पहले ही प्रचार शुरू किया। कम्युनिस्ट यानी कौन? जिन्होंने 1942 में स्वातंत्र संग्राम का विरोध करके ब्रिटिश सरकार के गुप्तचरों का काम किया था, 1940-47 में जिन्होंने देश के विभाजन का समर्थन किया था, 1962 में जिन्होंने चीन को यह आक्रमणकारी हो नहीं सकता ऐसा प्रस्ताव करके चीन का समर्थन किया था, ये कम्युनिस्ट। एक कहने लगे ये आरएसएस वाले, इनके पास देशभक्ति कहाँ है? और यदि ये स्वदेशी कोई बात शुरू करती, इसका मतलब यह है कि भारत के पूंजीपतियों ने इनको पैसा दिया होगा ताकि विदेशी जिस इंडस्ट्री में से हट जाते वहां फिर इनकी मोनोपोली हो जाएगी भारतीय पूंजीपतियों की, और उपभोक्ताओं का चाहे जैसा शोषण करने के लिए खुली छूट मिल जाएगी, इसलिए पूंजीपतियों ने पैसा दिया होगा। ये प्रचार हमारे जन्म के पहले से ही कम्युनिस्ट ने शुरू किया था। लेकिन जिस समय स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, उसी समय जब ये पहला प्रस्ताव ये हुआ कि स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हो रही है, उसी समय दूसरा प्रस्ताव यह हुआ कि हमारी मांग है कि जो जो चीज देशी या विदेशी मार्केट में आती है उसका उत्पादन खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस चीज पर लिखा हुआ होना ही चाहिए। क्योंकि यदि उत्पादन खर्चा लिखा हुआ रहता है तो अनाप शनाप मुनाफाखोरी नहीं हो सकती। ये प्रस्ताव उसी समय हुआ, इसके कारण कम्युनिस्टों की तूती बंद होगी, नहीं तो विरोध पहले से ही था। जिस समय गैट का डंकेल प्रस्ताव आया, उस समय भी, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, उस समय भी स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि इसमें जाना नहीं चाहिए, यह संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए नहीं, तो विकसित देश विकसनशील देशों का शोषण कर वहां साम्राज्य स्थापन कर सके आर्थिक, इस दृष्टि से WTO की स्थापना हो रही, उसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा था। WTO की स्थापना हुई, उसके पश्चात तफसील में न जाते हुए एक एक कदम पर इस मंच ने WTO के बातों का खंडन किया है, विरोध किया है, जन जागरण किया है। किंतु दुख की बात है कि WTO के बारे में उचित रुख अपनाना सरकार के लिए संभव नहीं हुआ। हम लोगों ने जब कहा कि WTO ये शोषण करने के लिए है, हमारा ब्यूरोक्रेट्स ने कहा ये स्वदेशी वाले इनको क्या अर्थशास्त्र मालूम है, हम दुनिया से आइसोलेट हो जाएंगे, क्यों WTO को छोड़ना चाहिए। किंतु यह प्रचार इतना बढ़ा, इसके प्रभाव के कारण पिछले दोहा के अधिवेशन में सरकार के मिनिस्टर मारान, इन्होंने वही भूमिका अपनाई जो भूमिका स्वदेशी जागरण मंच पहले से कहता था, और इस दृष्टि से उन्होंने जो इतने दिन तक स्टिफ रेजिस्टेंस दिया, तीव्र प्रतिकार किया, उसके लिए हमने उनका अभिनंदन भी किया है। किसी ने कहा कि आप महारान के पास जाकर उनका व्यक्तिगत अभिनंदन कीजिए। हमने कहा भाई ये मैं नहीं करता, इसका कारण है। दोहा के अधिवेशन में महारान ने प्रशंसनीय कार्य किया, ये हमने कहा है, अखबार में भी आया है। प्रत्यक्ष जाकर इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ संदेह है। दोहा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद नए दबाव भारत सरकार पर लाने का काम कुछ लोगों ने शुरू किया। उसमें ऐसे ब्यूरोक्रेट्स है जो अमेरिका के जेब में, उसमें ऐसे नेता लोग हैं जो खरीदे गए हैं अमेरिका के द्वारा, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। और फिर अमेरिका ने विकसनशील देशों के लोगों को खरीदना, नेताओं को खरीदना और उनके देशों के हितों के विरुद्ध काम करने के लिए उनको प्रवृत्त करना, ये काम दोहा में ही शुरू किया था। नेता लोग खरीदे जा सकते हैं। जैसे आपको मालूम है, जिस समय सद्दाम हुसैन की बात आई, सारा अरब विश्व अपने खिलाफ न जाए इसके लिए कुछ अरब देशों को फोड़ने का प्रयास अमेरिका ने किया, जिसमें सऊदी अरेबिया और इजिप्ट का नाम है। इजिप्ट को उदाहरण के लिए बताऊं कि इजिप्ट को उस समय 113 अरब कर्जा इजिप्ट का माफ किया गया और फिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ इजिप्ट को लाया गया। तो इस तरह के प्रयास चल रहे। और फिर दूसरी बात है कि WTO में शामिल सब देशों के बारे में ऐसा है कि वहां जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको देश की ओर से अभिवचन कमिटमेंट देने का पूरा फाइनल अंतिम अधिकार रहता है। अमेरिका में अंतिम अधिकार नहीं। अमेरिकन कांग्रेस के लोगों ने कहा कि इन्होंने जो कुछ कहा है इनको अंतिम अधिकार नहीं है, अमेरिकन पार्लियामेंट यानी अमेरिकन कांग्रेस के सामने विषय आना चाहिए, और कांग्रेस यदि इसको रिजेक्ट करती है तो इनके अभिवचन को न मानते हुए अमेरिका ने उसको रिजेक्ट किया ऐसा मानना चाहिए। तो कांग्रेस मन उनके पार्लियामेंट के लोग इसके विरोध में काम कर रहे। इसके कारण हमने कहा कि हम सीधे जाकर उनका अभिनंदन करें, यह इस समय उचित नहीं होगा। और उसके बाद जो घटनाएं हुई है जिनका उल्लेख हमारे रिजोल्यूशंस में है, ये रिजोल्यूशंस आपके पास आएंगे, आपके ध्यान में आएगा कि हर उद्योग में, खेती में, हर क्षेत्र में विदेशियों को खुले छूट देना, ये काम शुरू हुआ। मोंटेंग सिंह अहलूवालिया की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं, सरकार ने उनको यदि रिजेक्ट नहीं किया और स्वीकार किया तो सारे क्षेत्र विदेशियों के लिए खुले हो जाएंगे। और फिर सरकार के प्रवक्ता ऐसा कहते हैं, ये बेशर्मी के साथ कहते हैं, ऐसा मैं कहूंगा कि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि साहब हमें प्रोटेक्शन दो, हमें संरक्षण दो, क्योंकि अमेरिका, यूरोप सारे लोग अपने अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्शन दे रहे, हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कॉम्पीट और पेरिश। आज हमने पढ़ा रिफॉर्म और पेरिश, अरे मतलब क्या है? सरकार काहे के लिए? अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए। अमेरिका उसका 1988 का कानून उस पर चलती है जिसमें स्पष्ट कहा गया कि कोई भी माल विदेश से आता है उसको बंदरगाह से नीचे उतारना नहीं उतारना, ये निश्चित करने का अधिकार अमेरिकन सरकार को है। और यदि अमेरिकन सरकार को लगा कि वह माल अमेरिका में उतरने के कारण अमेरिका के किसी इंडस्ट्री को धक्का लगता है तो हमें अधिकार है कि वो माल हम उतरने नहीं देंगे। उल्टा कहा कि हमारा माल किसी भी देश में जाता है उनके लिए बाध्य है कि उन्होंने हमारा माल लेना ही चाहिए, नहीं लिया तो हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। ये स्पेशल 301 उनके 1988 के कानून का है। और अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि WTO का कोई भी निर्देश यदि हमें बंधनकारक लगता है, नुकसानकारक लगता है, हम पालन नहीं करेंगे। अब जापान ने भी यह भूमिका ली है। और अभी जो चाइना आया है, चाइना ने, लोग पूछते हैं कि चाइना यदि WTO में जाता है भारत ने क्यों नहीं जाना चाहिए, अरे चाइना कब गया है, आज इतना प्रबल हो गया है कि अमेरिका को भी भय है चाइना का, चाइना को किसी का भय नहीं है, और WTO को वही मार्ग लेना पड़ेगा जो चाइना कहता है, नहीं तो चाइना WTO से बाहर जाएगा अपनी शर्तों पर, ऑन देयर ओन कंडीशन चाइना जा रहा है जब वह प्रबल हो गया है। तो इस तरह से दुनिया दूसरे तरफ जा रही। अब हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मल्टीनेशनल्स, अमेरिका, यह सब मिलकर एक षड्यंत्र है। और आपको आश्चर्य होगा, नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक एडवाइजर के नाते कई वर्षों तक काम करने वाले स्टिग लीड्स, इनका वह स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन की इसलिए यह समझकर कि विश्व कल्याण के लिए, लेकिन प्रत्यक्ष में अनुभव यह आया कि विश्व कल्याण के लिए नहीं, यह केवल डेवलप कंट्रीज के कल्याण के लिए है, और बाकी जो विकसनशील देश है उनका शोषण करना और उनको परतंत्र करना यह उनका उद्देश्य है, और प्रोसेस क्या है यह भी उन्होंने दी हुई है। वो आप अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो सर्कुलेट हुआ है किस प्रोसेस से वो इस तरह का शोषण कर रहे। स्टिग लीड्स जो अंदर की बात जानते हैं उनका यह स्टेटमेंट है। हम बोलते समय अमेरिका शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके कारण गलत फहमी होने की संभावना है कि हम सब अमेरिकन लोगों के खिलाफ है, ऐसा नहीं। आपको आश्चर्य होगा अमेरिकन लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। ऊपर के जो निहित स्वार्थ है, अमेरिकन कैपिटलिस्ट, यूरोपियन कैपिटलिस्ट, कैनेडियन कैपिटलिस्ट, इनका जो ऊपर का स्तर है वो सारा यह गड़बड़ करते थे, और इसके कारण वो हमारा शोषण करना तो छोड़िए, अपने देश के लोगों की भी वो फिक्र नहीं करते, हमारी क्या करेंगे। उदाहरण के लिए केवल बताता हूं कि उनके जब ध्यान में आया कि कोई भी उद्योग यदि बीमार हो जाता है और वह उद्योग फिर से अमेरिका में ही खड़ा करना है, तो बाहर से कच्चा माल लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, लेबर कॉस्ट बाहर से ज्यादा होगी, इससे किसी विकसनशील देश में यदि वह उद्योग शुरू किया, कच्चा माल लाने के लिए खर्चा नहीं होगा और चीप लेबर, सस्ता मजदूर मिलेगा, तो अपना मुनाफा होगा, यह सोचकर उन्होंने अमेरिका के उद्योग विकसनशील देशों में ले जाने का तय किया। अपने मजदूरों का क्या होगा, अमेरिकन मजदूर भूखा मरेगा, यह भी उन्होंने फिक्र नहीं की, इसलिए अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने इनका विरोध किया है। तो यह सब अमेरिकन लोग नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट इन अमेरिका, इनका यह षड्यंत्र है। अमेरिका के कंज्यूमर्स ने, जो कंज्यूमर्स मूवमेंट है उसके नेता मिस्टर नाडेर, इन्होंने इसका विरोध किया है, और एक मंच निर्माण हुआ है, दी अदर इकोनॉमिक समिट, जिस मंच में अपने भारत के एक सर्वोदय कार्यकर्ता रमेश दीवान यह भी है, इसमें विकसित देशों के, विकसनशील देशों के प्रतिनिधि है, और जो G7 या अभी G8 इनके कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव होते हैं, उसी जगह उसी गांव में दूसरे दिन इनके कॉन्फ्रेंस होती है और उसका विरोध करने वाले रिजोल्यूशंस ये पास करते हैं। तो इस तरह से जब लोगों को पता चलने लगा, फ्रांस के किसानों ने इसका विरोध किया है, जर्मनी के मजदूरों ने इसका विरोध किया है, ब्लेयर जब इनके लाइन में आए तो ब्रिटिश मजदूरों ने इतना विरोध किया कि ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पहले ब्रिटिश लेबर पार्टी को पैसा देती थी, वो पैसा देना बंद किया, और ब्रिटिश लेबर पार्टी के कैंडिडेट जहां खड़े होते थे वहां पैसा देते थे, उन्होंने आदेश दिया इनके लिए पैसा नहीं देना, माने चारों ओर से इनका विरोध हो रहा है। किंतु हमारे सरकार के कुछ विशेष सोचने की पद्धति दिखती है। WTO ने जहां हमें सहूलियत दी कि भाई ये आपके राष्ट्र विरोधी कानून दिखता होगा, अभी नहीं, 2004 में वो कानून में अमेंडमेंट कीजिए, 2006 में कानून में अमेंडमेंट कीजिए, वो भी न लेते हुए उन्होंने तुरंत अमेंडमेंट करने की जल्दबाजी की। क्यों किया होगा यह देखने की बात है, यह सोचने की बात है। हम लोगों को समझता है क्या, मंत्रियों को समझता नहीं? तो यह समझना चाहिए कि अमेरिका की खरीदने की ताकत बहुत ज्यादा है, उसका विचार करके इस प्रश्न का विचार करना चाहिए। अब तो यह हुआ है कि केवल अपने राष्ट्रीय स्वार्थ का विचार अमेरिका करती है, इसके कारण अमेरिका और यूरोप में भी अब झगड़ा खड़ा हुआ है सब्सिडी के प्रश्न पर। पूरा प्रश्न बताने की आवश्यकता नहीं, किंतु यूरोप और अमेरिका में भी झगड़ा खड़ा हुआ है। तो इस तरह से जहां बाकी लोग अपने अपने राष्ट्रीय हितों के दृष्टि से काम करते हैं, हमारी सरकार नहीं कर रही। हालांकि मैंने कहा कि महाराण का हमें अभिनंदन किया, किंतु ये कंटिन्यू होने वाला नहीं है, परसिस्ट होने वाला नहीं है। सारे जो आ रहे हैं, खासकर मॉन्टेंग सिंह अहलूवालिया के टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस, ये सारे देश को विदेश के लिए खुला करने वाले। सरकार की नीति क्या होगी देखना पड़ेगा। बजट आ रहा है, बजट के समय यह स्पष्ट होगा। बजट अर्थमंत्री लाएंगे, और ऐसा दिखता है कि हिंदुस्तान में अर्थमंत्रियों के लिए एक व्यावसायिक बीमारी है, ऑक्यूपेशनल डिसीज। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में कहते हैं कि हर एक ऑक्यूपेशन में कुछ न कुछ तो भी उसका डिसीज रहता है। किसी ऑक्यूपेशन के कारण लंग इफेक्ट होते हैं, किसी के कारण हार्ट इफेक्ट होता है, किसी के कारण स्किन डिसीज होता है, किसी के कारण आंखें खराब होती है। वैसे अर्थमंत्री पद का ऑक्यूपेशनल डिसीज हिंदुस्तान में है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है संपूर्ण विस्मरण। साउथ कमीशन के वैचारिक मार्गदर्शक के नाते, जनरल सेक्रेटरी के नाते, एक समय मनमोहन सिंह ने रिपोर्ट पेश की थी, उसका नाम है चैलेंज टू द साउथ। उसमें स्पष्ट रूप से वही कहा था जो स्वदेशी जागरण मंच कह रहा है, और फिर कहा कि इस साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिए, इसके लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन करना चाहिए वगैरह रिपोर्ट की। लेकिन जैसे अर्थमंत्री बन गए, ये ऑक्यूपेशनल डिसीज एमनेशिया का पूर्ण विस्मरण का हो गया, और जो जो लिखा था उसके ठीक विरोध में उन्होंने एक एक नीति अपनाना शुरू किया। आज के अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा जी स्वदेशी जागरण मंच के चिंतन बैठक में जो नागपुर में हुई थी रेशम बाग में उपस्थित थे। समारोह के पहले शेट्टीगार का भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि WTO में जाने के कारण हिंदुस्तान का ये नुकसान होने वाला है। और उसके बाद आखिरी भाषण यशवंत सिन्हा जी का हुआ, उन्होंने कहा कि हमने डरने की क्या बात है, हमारे पास इतनी जनसंख्या है, इतने हमारे साधन स्रोत है, कोई डरने की बात नहीं। WTO में जाने के कारण नुकसान होता है, तो वी मस्ट फिट WTO, इति यशवंत सिन्हा। लेकिन जैसे अर्थमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, एमनेशिया, सब भूल गए, और एक के बाद एक गलत काम करना उन्होंने शुरू किया। इस बजट के समय वो क्या करेंगे क्या नहीं, यह देखने की बात है। लेकिन एक मैं कहूंगा कि उसके पहले ही देशभक्त इस नाते सभी लोगों ने जन जागरण करते हुए, लोकमत जागृत करते हुए, इस तरह का वायुमंडल बनाना चाहिए जिसके कारण कोई भी गलत कदम उठाने का साहस यशवंत सिन्हा जी को न हो, इस तरह का वायुमंडल अभी तैयार करना चाहिए। और इस दृष्टि से बाकी जो झूठे आर्गुमेंट्स आते हैं उनके हम स्वयं शिकार न बने। सारे आर्गुमेंट झूठे बनाए हुए हैं, जैसे ये कहते हैं अरे भाई विदेशों से टेक्निकल एड नहीं लेंगे तो क्या होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने ऐसा लिखित कहा है इंडिया 2020 में कि विदेशों से बिल्कुल टेक्निकल एड न लेते हुए भी हम 2020 साल तक फ्रंट रैंकिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड में भारत को ले जा सकते। जो साइंटिस्ट वो कहते हम कर सकते, और राजनेता कह रहे नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिस्ट को अभी तक किसी ने पैसा दिया नहीं, यह बात स्पष्ट है। तो हमने समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या है और क्या बजट में आता है। उसके पहले हमने प्रचंड जनजागरण करते हुए सरकार पर दबाव लाना चाहिए और ऐसी परिस्थिति निर्माण करना चाहिए कि सरकार को भी याद हो जाए कि चुनाव आएंगे कभी ना कभी। इनको खड़ा होना पड़ेगा जो राज्य करता है, और इनके मतदाता अमेरिकन नहीं है, यूरोपियन नहीं है, इनके मतदाता भारतीय है। और भारतीय यदि जागृत हुए, भारतीय यदि जागृत हुए हैं, तो आज वो भले ही मनमानी कर ले, या तो मनमानी ऐसे चल रही जैसे चित्रा सुब्रमण्यम ने कहा था कि इंडिया इज फॉर सेल, ऐसा WTO में दृश्य दिखाई देता है। तो इंडिया इज फॉर सेल ऐसी एटीट्यूड लेकर यदि एक काम करते हैं, अगले चुनाव में इनके मतदाता भारतीय है, जागरूक मतदाता है, स्वदेशी वाले मतदाता है, इस बात को ध्यान में रखना। बजट के समय अर्थमंत्री जी को बाध्य हो जाए, इतना जन जागरण इस थोड़े समय में हम करें, इतनी ही प्रार्थना करता हुआ मैं मेरा भाषण पूरा करता हूं।